يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے کیا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے. ہاں لیکن فمن اوفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، بس جس کو کہ معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے. یہ جو من اخی ہی ہے نا، اس کے نیچے ڈاؤن ایرو لگا کے لکھیے مقتول کے وارث. سبحان اللہ، کیسا پیارا دین ہے. جس نے قتل کیا ہے، جس کا قتل ہوا ہے، ان کو آپس میں اخوت کے بندھن میں باندھ رہا ہے. یعنی ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو، کیونکہ قاتل تو مقتول تو مر گیا، مراد ہے اس کے گھر والے اگر اس قاتل کو معاف کرنا چاہیں یا کوئی بھی آسانی اس کے لیے کرنا چاہیں، تو فتباؤں بالمعروف وعداؤن الیہ بإحسان، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو معروف طریقے کے ساتھ خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے، کمی ہے، اور رحمت بھی ہے. اب اتنے خوبصورت قانون کے آنے کے بعد بھی فمن اعتدی بعد ذالک، بس جو کوئی زیادتی کرے اس حکم کے، اس آسانی کے، اس نرمی کے نازل ہونے کے باوجود بھی، تو پھر پوچھ اس کو بتا دو کہ فلہو عذاب نلیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی مزید ڈیٹیل اگلی آیت میں. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. یہ دو آیات، ان کو آیات قصاص کہتے ہیں. دو تین چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے. یہ جان جو ہمارے اندر ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اسلام نہ تو اپنی جان لینے کا حکم دیتا ہے، نہ کسی کی لینے کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ غور کرو کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کر کے دیکھو، تمہیں اس میں کتنا سکون ملے گا. اور یہ قانون تھا جس سے عرب، جو گھر گھر لڑائی جھگڑا تھا، وہ کیسے امن اور چین میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، اتنا زیادہ قتل و غارت تھا عرب میں کہ وہ مولانا حالی کی معروف نظم آپ کو بھی یاد ہوگی کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اس بات پہ ان میں جنگ لگ جاتی تھی کہ میرے کھیت کے اندر سے ایک چڑیا اڑ کے تمہارے کھیت میں کیوں چلی گئی ہے، یہ میرے درخت کا پھل ٹوٹ کے تمہارے باغ میں کیوں گر گیا. اس پہ دو لڑتے تھے اور مار دیتے تھے، بات بات پہ قتل. ہاتھ ان کا مچلتا تھا تلوار پہ. تو ایسے ہی دور میں ایک اور ظلم کیا تھا کہ قبیلہ خزرج اور اوس، جن کی باتیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. خزرج دولت مند تھے، وڈیرے ٹائپ، نواب ٹائپ، لیڈرز ٹائپ، چودھری ٹائپ، یعنی ان لیڈ طبقہ تھا اپنی سوسائٹی کا. اور اوس جو تھے وہ بیچارے ماڑے لوگ تھے، غریب تھے، کمزور لوگ تھے. اب جب اوس کا کوئی مارا جاتا تو وہ کہتے بس بس کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کچھ دے دلا کے چھوڑ دو. اور خزرج کا اگر کوئی ایک مارا جاتا تو اس کے بدلے میں اوس کے بیسیوں مار دیتے. اسی طرح کا ایک مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آیا، اس پر آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں اسلام کا مزاج، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ ان کی کیئر نہ کریں، آپ ماننے والے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ آپ کو انداز یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا میں بھی دکھا تھا. راعینا کو راعینا کسی اور نے کہا، اللہ نے اپنے گھر والوں کو سمجھا دیا، یعنی اپنے بندوں کو سمجھایا. ایسے اس میں ایک عمل کی بات چھوٹی سی سمجھ آ جائے گی آپ کو، میرے اب ہمارے عمل کی، کہ کسی میں بھی جھگڑا دیکھیں نا، سمجھائیں اپنے بچے کو. آپ کے بچے کو کوئی مار دے نا، روتا ہوا آ جائے تو آپ کے بیٹا آپ ادھر گئے کیوں تھے، آپ سے اس نے کیا، آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا. یعنی اپنے گھر کی اصلاح کر لینے والا پھر معاشرے کے زیادہ بگاڑ کا شکوہ نہیں کرتا. کیا حکم دیا؟ کتبہ علیکم، لکھا گیا تم پہ. یہ کتبہ کے لفظ آگے آپ بہت دفعہ دیکھیں گے، سمجھ لیجئے. کتبہ کاف تا با اس کا روٹ. کتابت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اس کو کہتے ہیں لکھت پڑھت، ڈاکیومنٹیشن. لیکن اسلامی ٹرمینالوجی میں یہ فوریزہ کے معنوں میں آتا ہے. فوریزہ فرض کیا گیا، کنفرم 100%، यानी ये लॉ में लिख दिया गया, ये बुक ऑफ लॉ लिख दी गई तुम्हारे लिए, ठीक है। कुतिबा अलैकुम, तुम पर लिख दिया गया। अब यहाँ देखिए लफ्ज़ अलैकुम, सबको कहा गया, तुम सबको कहा गया, हालांकि सारे तो नहीं कत्ल करते, सारे ईमान वाले, ये अगला जो किस्सा आ रहा है उसमें मददगार नहीं है, मामला तो चंद एक का है। तो अलैकुम क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह ताला पूरी सोसाइटी को पाक करना चाहते हैं, सब सपोर्ट करते हैं एक मकतूल को, एक कत्ल ऐसे नहीं होता। आज भी अगर इस्लाम के खिलाफ कोई गलत प्रोपेगंडे करता है तो उसका नुकसान जो है वो पूरे मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसी एक इंसान का कत्ल सिर्फ इंसान का कत्ल नहीं होता बल्कि वो कानून का भी कत्ल होता है, हुर्मत टूटती है इंसानियत की। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब मुसलमानों को ये कानून रटा होना चाहिए, तुम्हें खूब अच्छी तरह पता हो क्या कि अल क़िसास फिल कत्ला, क़िसास का मामला होगा कत्ल के मामले में। कत्ला जो लफ्ज़ है ना, ये कतील की जमा है, यानी मकतूल, कत्ल के वाक़यात जो हैं इनके अंदर क़िसास लोगे। पहले हम लफ्ज़ समझेंगे क़िसास, खाफ स्वाद स्वाद इसका रूट होता है। कोई लफ्ज़ हमारी उर्दू में भी आता है इसे मिलता हुआ, किस्सा कहानी, बिल्कुल वही लफ्ज़ है ये। खाफ स्वाद स्वाद के दो मानी है, नंबर एक पीछा करना, टू फॉलो, चेस करना। कहानी में होता क्या, सुनाने वाले का पीछा कर रहे होते हैं सुनने वाले। जैसे अभी मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊँ ना तो आपका दिल नहीं चाहेगा मैं रुकूँ, आपका जहन साथ ही चलना शुरू हो जाएगा, आप सुनना शुरू हो जाते हैं लिखने की बजाय, तो जहन साथ साथ चलता है, पीछा करना, ठीक है। क्या पता चला, अभी वो तो किस्सा कहानी था, सूरत कसस भी है कुरान में, जमा है किस्से की, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये क्या है कि जुर्म का पीछा किया जाएगा, किसी ने कत्ल किया तब छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि बदला लिया जाएगा, तो उसका मामला जो है वो छोड़ नहीं दिया जाएगा, पीछे नहीं डाल दिया जाएगा कि चूंकि बड़े लोगों ने अब कत्ल करना शुरू कर दिया तो अब हम इनको कुछ नहीं कहते, बल्कि क्या है कि उसके नतीजे में दूसरे को भी कत्ल किया जाएगा। एक मानी ये हुआ। दूसरा लफ्ज कसास का डिक्शनरी में जो मानी आता है वो है बराबरी। तो इसमें बहुत खूबसूरत रब्त बनता है कि इस्लाम ने कसास के जरिए जुर्म और सजा में मुमासलत कर दी, जैसा जुर्म वैसी सजा, जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सज़ा। बात वाज़े है, इंसान इस्लाम का कानून इंसाफ वाला है, बिल्कुल है कि कोई किसी को ऐसी पकड़ के नहीं मार सकता, ये कोई ऐसे कवानीन नहीं है कि जिसका जो दिल चाहा उसने ये कर दिया, बल्कि हर कानून के पीछे एक बराबरी की बुनियाद है। अब किसका कत्ला है, अल्लाह ताला ने बता दिया। यहाँ तो सिर्फ ये आयत इतनी आई है ना जान के बदले में, सूरह मायदा में इसके अंदर जख्मों की भी बात होगी, यानी किस चीज का बदला लेना है, नंबर एक जान के बदले जान, दूसरा आजा का बदला, किसी ने किसी का उसको काट दिया, किसी ने किसी की नाक काट दी तो बदले में उसकी भी नाक कटेगी, ठीक है। तीसरा बदला है जख्मों का, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह मायदा में, यानी जान को लेगा तो बदले में जान ली जाती है, अजा काटेगा तो अजा काटना जख्मों का भी बदला है। और किसको ये सारा कुछ सुनाया जा रहा है, मरने वाले के घर वालों और कत्ल करने वाले को, कि देखो कानून यही है, तुमने इसको अल्लाह ताला के लगाए हुए कानून समझकर इस्तेमाल करना है। अलहुर्र बिलहुर्र, कोई आज़ाद शख्स था किसी आज़ाद को कत्ल करे तो क्या होगा, उसके बदले में किसी और आज़ाद को कत्ल करो, नहीं। ये देखिए अलहुर्र एक आज़ाद शख्स, बिलहुर्री आज़ाद के बदले, बज़ाहर क्या लग रहा है इसमें, बहुत मुग़ालता लगता है अगर इसको हम थोड़ा सा गौर से ना देखेंगे कि कोई शख्स किसी के एक आज़ाद शख्स को कत्ल करता है, क्योंकि अरब सोसाइटी उस दौर में दो ग्रोहों में बटी हुई थी, गुलाम और आज़ाद, कुछ लोग आज़ाद थे कुछ गुलाम थे। बज़ाहर अगर इस आयत को हम देखेंगे ना तो इससे पता चल रहा है कि गुलाम जब कोई मारा गया ना तो उसके बदले में तुम भी किसी का गुलाम पकड़ो और मार दो, ऐसे ही लग रहा है ना कि भाई एक गुलाम के बदले एक गुलाम, आज़ाद के बदले एक आज़ाद, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे अलहुर्र बिलहुर्री, जब कोई आज़ाद शख्स किसी को कत्ल करेगा तो बदले में वही आज़ाद कत्ल मारा जाएगा। यदि आप देखें हुर और बिलहुर दोनों जो ना एक कातिल बन रहा है, पहला हुर और बिलहुर में वही कातिल है, कत्ल करने वाला अगर एक आज़ाद शख्स है तो उसको भी मार पड़ेगी। हाँ वलब्द बिलब्द, एक गुलाम है कत्ल करने वाला तो बिलब्द उसको भी उसी के जरिए से मारा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा चलो ये गरीब है ये भूखा था पता नहीं इसके साथ क्या मसला था हम इसको छोड़ दें। इसी तरह वलुनसा बिलुनसा, कोई औरत कत्ल करेगी तो बदले में वही औरत मारी जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि अब ये तो बेचारी औरत है, ये मर गई तो इसका क्या हाल होगा, बल्कि उसको मारा जाएगा। एक तो इसमें ये पता चला कि जो मार रहा है वही मरेगा, और दूसरा ये कि एक के बदले में एक ही मरेगा। वो दास्तानें नहीं शुरू हो जाएंगी कि कितनी सदियों से नस्लों तक वो चलते रहे। लेकिन इसमें फिर सहूलत है, फमन उफिया लहू मिन अखीही ही शयुन, कत्ल के बदले में, कत्ल पहली बात तो समझ आ गई, लेकिन अब कोई माफ कर दे, घर वाले कहते हैं हमारा तो मर गया, अब हमने क्या करना है, माफ करते हैं, तो फतिबाउम बिल मारू। ये दूसरी सूरत, इस पे आप नंबर 2 लिख सकते हैं। पहला क्या था, अलहुर्रु बिल हुर से लेकर बिल उनसा तक आयत का हिस्सा। दूसरा, फमन उफिया लहू मिन अखीही शयुन फतिबाउम बिल मारू, ये दूसरा हिस्सा, कोई माफ कर दे, कुछ भी ना ले, तो ये दूसरी सूरत है। तीसरा, वा के आगे ऊपर आप 3 लिख लीजिए, व अदा इलैही बे एहसान। तीसरी सूरत है कि फिर अदायगी कर दो, दियत दे दो, ब्लड मनी दे दो एहसान के साथ, अपने पास से कुछ ज्यादा दे दो। ये 3 ऑप्शन है इस्लामी कानून में कत्ल के बदले या किसी को जख्मी करने के बदले। इस्लाम से पहले 2 बड़े मशहूर मजाहब थे, एक क्रिश्चियनिटी और एक ज्यूज़म। दोनों में एक्सट्रीम थी। ज्यूइज्म में क्या था, कोई किसी को कत्ल कर दे तो बस ओनली वन ऑप्शन, कत्ल कर दो। और ज्यूस की हिस्ट्री में कत्ल बहुत है, कोई कत्ल करे बदले में कत्ल करो। आप याद कीजिए, बछड़े की जो पूजा थी उसकी सजा में भी इनको कत्ल का हुक्म दिया गया था। बड़ी खून से रंगी हुई तारीख दिखती है कत्ल के मामले में इस कौम की। क्रिश्चियंस में दूसरी इंतहा थी, सिर्फ माफ़ी माफ़ी माफ़ी, लव 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 की बात करो, कोई बात नहीं, वो तुम्हें प्यार करते हैं, फिर क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम माफ़ करते जाओ। इस्लाम ने आकर इन दोनों के साथ एक तीसरी बीच की चीज़ रख दी कि तुम फिर ब्लड मनी दे दो। ब्लड मनी क्या होती है, खून बहा, हर दौर में उसकी कीमत बदलती जाएगी। कितनी है इस्लाम में, नबी सल्लम की आमद से पहले अरबों में 100 ऊँटों की कीमत चल रही थी। और उसके पीछे बड़ा दिलचस्प वाक्य है, अगर वक्त हो तो मैं आपको सुना दूं, कि नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ। आपको बताइए हदीस, 2 ज़बीहों की औलाद हूँ मैं, वो कैसे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और दूसरे अल्लाह के नबी सल्लम के वालिद अब्दुल्ला जो थे उनको भी ज़बीहुल्ला कहा जाता है। उसके पीछे वाक्य तवील है, कभी सुनाऊंगी डिटेल से। खुलासा क्या है कि अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लम के दादा थे, इन्होंने, इनके 10 बेटे थे, आपको पता ही है कि एक से दो थे। उस दौर में एक रिवाज होता था, या मन्नत के तौर पे लोग इस तरह कर लेते थे कि जब मुझे अल्लाह ने 9 बेटे दिए या 10 बेटे दिए तो एक मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। जब उनके बेटे होते गए ना, तो 10वां बेटा अब्दुल्ला था, तो उस नाते से अब्दुल्ला को कुर्बान होना था। लेकिन वो खूबसूरत थे, मासूम थे, और बाप होने के नाते दिल नहीं चाह, तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि अगर मैं इसको ना ज़िबा करूँ तो मैं क्या करूँ। तो उनको ख्वाब और उस दौर के रिवाज के मुताबिक वो जैसे पांसा डालते थे, तीरों से मालूम करते थे क्या करूँ। अच्छा, अगर मैं 10 ऊँट ज़िबा कर दूँ तो इस बच्चे को करूँ, किसको करूँ। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने कुरा निकाला तो 10 ऊँटों की कीमत निकली। कहा भी फिर दोबारा, 10 दफ़ा जब उन्होंने किया, 10 10 करते 100 ऊँट हो गए। तो फिर उस पर उनका तस्फिया हुआ कि अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं करते, लेकिन उनके बदले में 100 ऊँट ज़िबा करेंगे। उस दौर से लेकर नबी सल्लम के दौर तक यही रिवाज चल रहा था कि ब्लड मनी, जिसको कहते हैं दियत, कहते हैं इसको हमजा दाल हमजा। तो उस वक़्त से जब भी किसी को ब्लड मनी देनी होती थी तो 100 कीमत थी। इसमें बज़ाहर कोई कबाहत नहीं थी, इस्लाम ने उसी को वेरीफाई किया। दिन में रखिए, आज भी इंशाल्लाह जब इस्लाम आएगा ना प्रैक्टिकली हमारे मुल्कों में और दुनिया में, तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ जहाँ ख़राबी है उसको चेंज करेंगे। पूरे का पूरा सिलसिला नहीं ख़त्म किया जाएगा कि डिमोलिश करके दुनिया एक नई बसाई जाएगी। इसी को इंशाल्लाह जहाँ रिफॉर्म किया जाएगा वहाँ रिफॉर्म किया जाएगा, जहाँ रीबिल्ड करने की ज़रूरत होगी वो होगी। तो वो 100 ऊँटों की कीमत आज भी है, और ऊँट की कीमत हर दौर में बदलती है। कितना इंसाफ है इस्लाम का। अगर उस दौर में कोई कीमत मुकर्रर कर दी जाती उस दौर के हिसाब से, मिसाल है कि 100 दिरहम कर दी जाती, कल तो वो 100 दिरहम थे, आज वो क्या मुश्किल थी, कत्ल करो 100 दिरहम दे के आज़ाद हो जाओ। नहीं, अल्लाह ताला ने वो स्टैंडर्ड रखा कि जैसे गाड़ियों की कीमत बढ़ती जाती है बकरियों की, आज आपको शायद अंदाज़ा हो बकर ईद पर के ऊँट 50-50 हज़ार रुपये का भी है, 1 लाख का भी ऊँट है, तो 100 ऊँट सोचिए करोड़ तक बनते हैं। आज कोई मरता है तो हुकूमत अगले दिन तक अखबारों में तस्वीरें दिखाती है, जी वो फलाह मर गया कवा, उसके वरसा को हुकूमत ने 1 लाख रुपए का चेक दिया और साथ उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं। लोग कहते हैं चलो कितनी अच्छी हुकूमत है, वो 1 लाख में इसलिए बच रही है कि इस्लाम नहीं है। क्योंकि वो तो 2 टों की कीमत दे के बच रहे हैं, अगर इस्लाम आता तो उनको उनको 50 लाख या 1 करोड़ देना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से 3 ऑप्शन दे के हर तरह के लोगों के लिए सहूलत कर दी। हाँ, मुआफ़ी का हक किसको है? वो रसा को है। और ये कब तक है? जब तक मुकदमा अदालत में नहीं आएगा। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एक चीज़ ही नहीं है, जिसको अप्लाई करेंगे तो फिर देखें क्या। लेकिन नॉलेज के हद तक जितनी चीज़ें उसको सामने रखते हुए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बैलेंस्ड कानून दे के फरमा दिया कि लवलकुम फिल कसास ही हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए इस कसास के कानून में ज़िंदगी है अकल वालों, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। ज़ाहिर ये जुमला इंसानी अकल से सोचें तो मजाक लगता है ना उस बिल्ला। अच्छा जी, एक खुद मर गया, एक ने किसी को मार दिया और दूसरे को हम मार रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि एक एहसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। और ये है वो जुमला, ये है वो मौजू जिसको बुनियाद बना के इस्लाम को टेररिस्ट और मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यह जुमला सच्चाई में इतना बड़ा हुआ है कि जहाँ मुजरिम को पता चल जाएगा कि मुझे इतनी पकड़ होनी है, वो किसी दूसरे को नहीं मारेगा। आज स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, आज के फिगर्स ये बताते हैं कि जहाँ इस्लाम होगा वहाँ कितना अमन होगा, कितना चैन होगा, और जहाँ इस्लाम नहीं होता वहाँ क्या होता है। अफसोस की बात है कि आज पढ़े लिखे दौर में और इतने जदीद इंतजामात, इतना सिक्योरिटी सिस्टम, इतने आप देखिए कि सैटेलाइट्स हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें कत्ल की रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्कों का तो उछाला बहुत जाता है ना। अल्लाह ना करे आपको कभी वास्ता पड़े, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके तो देखिए, जान माल इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। गिव अप कर चुकी है हुकूमत कि हम नहीं पकड़ सकते। कोई चोरी कर जाता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो अमेरिका में ऐसे लॉज आ गए हैं कि रिपोर्ट भी नहीं लिखते, कहते क्या फ़ायदा, पकड़े तो जाने नहीं चोर। हालांकि आप देखें उनके पास कितने इंतज़ाम आते हैं। एक ही चीज़ है वो किसी सोसाइटी में अमन लाएगी, और वो है अल्लाह के कानून, लअल्लकुम तत्तकून। तुम बच जाओगे, तुम्हारी दुनिया में अमन आएगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम अल्लाह की बात मानो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा अमन और चैन आ जाएगा, और तुम अपने आप को रखोगे। अब आप देखें, ये तो हमने आज समझ ली। आज के दौर में अगर हम देखें तो क्या यही गुंडागर्दी आज भी है?
बिल्कुल है।
किसी गैर का कोई एक स्फीर, कोई एक एम्बेसडर मारा जाए, कोई एक सहाफ़ी मारा जाए, पूरे पूरे मुल्कों की शामत आ जाती है। ये तो डेमोक्रेटिक बातें हैं ना, हमारा फील्ड नहीं है इस वक्त ये बात करने का। लेकिन सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए ये जुमला आपको बता रही हूँ कि आज फिर वही गुंडागर्दी मौजूद है जो इस्लाम के आने से पहले थी। कि हमारे मुल्कों में कोई एक हल्का सा भी काम हो जाएगा तो वो सारी दुनिया में उछाला जाएगा। किसी मुसलमान से सिर्फ एक ट्रैफिक रूल टूट जाएगा तो सारी दुनिया में उसको उछाला जाएगा, और अपने मुल्कों के बड़े बड़े खेल कहानियाँ ख़त्म होती हैं। क्या करें फिर, नारे इख्तलाफ नहीं, इस कुरान को आम कर दो। अपने ही मुसलमानों को अगर हम सच्चा दीन देने लगेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे कि अगर ये सब कुछ है तो फिर हमारे मुल्कों में ही क्यों नहीं ये सज़ाएं नाफिज हो रही? अफसोस की बात नहीं है, मोर देन हाफ सेंचुरी, 60 ईयर से प्लस हो गए पाकिस्तान बने हुए, आज तक हम वहाँ इस्लामिक लॉज नहीं ला सके, अप्रूव ही नहीं हो सके, उसको लाना तो दूर की बात है। क्यों भाई? जिस इस्लाम के नाम पे हमने मुल्क हासिल किया, मारूफ नारा लगाया जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस पाकिस्तान की गली गली में कब्र पड़ी हुई है, शिर्क के गढ़ है, दरगाहें हैं, कब्रें हैं, क्या वजह है आखिर? कौन रोक रहा है हमें? हम खुद रुक रहे हैं। शऊर ही नहीं, इल्म ही नहीं। कभी नारों से इस्लाम नहीं आता। कुर्बानियाँ देने वालों ने दे दिया, मुल्क का टुकड़ा दे दिया, मिल के आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक ज़हनी गुलामी मौजूद है। आप चाहते हैं आज भी पाकिस्तान को वाकई पाक बनाएं। पाकिस्तान क्या है? ये पर्शियन का लफ्ज़ है, पाक यानी प्योर लैंड, पाक ज़मीन। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से करप्शन ख़त्म हो, यहाँ से कत्लो गारत ख़त्म हो, तो उसका एक ही इलाज है कि लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ा जाए। जिसको आखरत याद होगी, जिसको अपनी उस मौत के बाद की एक अगली ज़िंदगी याद होगी, वो कभी भी नहीं हटेगा। और इस पे बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं कि कातिल कल क़यामत के दिन किस हाथ में हो, किस हाल में आएगा।
बिल्कुल, इन जिसने कत्ल किया होगा वो उसी हालत में वहाँ उसके साथ मामला किया जाएगा। आगे इंशाल्लाह जहाँ सूरह मायदा में ये मौजू फिर बहुत तफसील से आएगा, यहाँ आपको सिर्फ हिंट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ आपको कुछ कोटेशंस और कुछ अहादीस भी कोट करवाऊंगी कि इस्लाम कितनी वाज़ तालीमात देता है। और सिर्फ यही हिस्से पाकिस्तान की जेलों में जो लोग कत्ल के केसेस में कैद हो चुके हैं उनको सिर्फ यही पढ़ा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो जेल से निकलें तो इंसान बन के निकलें। हमारे यहाँ मारूफ बात है कि शरीफ इंसान जेल में जाते हैं और कातिल और गुंडा बन के निकलता है, क्योंकि वहाँ फरागत है और गंदे लोगों से बैठते हैं, चर्सी अफीमी लोग, और ही ख़राबी होती है। तो सारी बातों का एक हल है कि लोग अल्लाह की किताब से जुड़ें। अब ये तो एक कत्ल कैफियत थी, अब मौत ही से मुतल्लिक दूसरे अहकाम हैं, आयत 180 को देखेंगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हसर अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अल वसीयतु, तुम पर फ़र्ज़ किया गया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए तो वह अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो क्या है, अल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक्रबीन, तो वसीयत करना है वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से, बिल मारूफ मारूफ तरीके से, क्या है ये, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकियों पर, यानी मुत्तकियों के ऊपर ये चीज़ लाजिम है कि वो मौत के वक्त जो वसीयत करें उसको पूरा किया जाए। करने वाले ने तो कर दी, लेकिन उसके बाद क्या है, इसको हम साथ ही अगली आयत को भी देखेंगे, बल्कि 182 तक अब एक ही टॉपिक है, तो खुलासा इकट्ठा करेंगे फिर आगे बात दोबारा होगी। फरमाया कि वसीयत कर दो मरते वक्त, ये हक है मुत्तकियों का, लेकिन वसीयत तो कर दी, लेकिन फमम बदलहु बादमा समेअहु, बस जो कोई बदल दे इस चीज़ को जो उसने सुनी, यानी वसीयत करने वाले ने तो वसीयत ठीक ही थी लेकिन बाद में किसी ने बदल दी तो क्या होगा, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो बेशक उसका गुनाह उन लोगों पर है जो उसको बदल देते हैं। हु से मुराद जहाँ वसीयत है, यानी बाद में कोई वसीयत को बदल दे तो इसका गुनाह बदलने वाले पर है, ना कि वसीयत करने वाले पर। और बदलने वाले ये बात खूब जान लें कि इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अब ये भी बात हो गई। तीसरी एक और सूरत है, 182 में देख लेते हैं इसको, फमन खाफ अमिन मूसिम जनफन, यानी कभी कभी मरने वाला खुद ही वसीयत गलत कर दे तो उसकी अब बात हो रही है। फरमाया अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने ना दानिस्ता या कसदन, यानी जनफन औ इस्मन, जानते बूझते या अनजाने में गलत वसीयत की, हक तलफी की, तो क्या किया जाएगा, फ़असलह बैनहुम फला इस्म अलैहि, फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, क्योंकि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। टॉपिक थोड़ा सा स्कील है, इसलिए हो सकता है कि आपको बोझल लगा हो, लेकिन बहुत ही अहम मौजू है। हर बंदे को मरना है, मौत के वक्त जो बातें की जाती हैं हमारी इस्तलाह में उसको वसीयत कहते हैं, लेकिन असल में जो वसीयत लफ्ज़ होता है बहुत ताकीदी हुक्म, बड़ी अहम बात को वसीयत कहते हैं। अगर रूट वर्ड्स देख ले इस आयत के, तो वसीयत का लफ्ज़ वौ स्वाजा से है, वसी वसीयत करने वाले को कहते हैं, मूसिन वसीयत करने वाला, हज़रा का लफ्ज़ देख लीजिए, हा द्वाद राइस का रूट है। इस आयत का थीम क्या है कि हर बंदा कत्ल में नहीं मारा जाता, पिछली आयत में बात हुई कत्ल की, यहाँ बताया गया कि चलो वो तो कत्ल कभी कोई होता है लेकिन मौत तो हर एक को आनी है। अब जब मौत आए तो उस वक़्त क्या किया जाए, इसका हुक्म है, कैसे, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया, मुकरर कर दिया गया अल्लाह की तरफ से, ये बात तुम्हारे ऊपर लिख दी गई, क्या, इज़ा हदर अहदकुमुल मौत, जब हाजिर हो तुम में से किसी को मौत, मतलब क्या है कि वो डेथ बेड पे हो और मौत की सिम्टम्स शुरू हो चुकी हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो मौत कई दिन की बीमारी के बाद आती है, बाज़ दफ़ा मौत जो है वो अचानक आ जाती है। इससे दोनों ही बातें मुराद है, मुराद यह है कि किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त हालत क्या हो कि इन तरह का खैरन, या लफ्ज़ खैर पे गौर कीजिएगा, वसीयत वो कब करेगा, जब वो कुछ खैर छोड़ के जा रहा है। लफ्ज़ खैर जो है ना, یہ دو معنوں میں آتا ہے عربی میں، ایک تو وہی خیر جو اردو میں ہم کہتے ہیں، اللہ تمہیں خیر دے، بھلائی کے معنوں میں، نیکی کے معنوں میں، لیکن یہاں معنی اس سے مراد ہے مال، منی. بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ہاں ایک عجیب کانسیپٹ دے دیا گیا دین کے نام پہ کہ مال رکھنا، مال جمع کرنا، کمانا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، یہ سراسر دنیا داری ہے. اور دین دار کے پاس مال ہو تو ایسے ہی لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا. حالانکہ اسلام مال کو کیا کہتا ہے؟ خیرہ. اس کی ایک مثال آخری پارے میں بھی آتی ہے سورۃ عادیات میں کہ ان الانسان لخب الخیر لشدید. وہاں خیر کیا ہے؟ مال. کہ انسان کے دل میں مال کی محبت کی بڑی شدت ہے، تو مال کوئی بری بات نہیں. یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کوئی اس حال میں مر سکتا ہے کہ مال چھوڑے. اسلام یہ بالکل نہیں چاہتا کہ جب کوئی بندہ مرے تو مفلس ہو، کلاش ہو، بلکہ اس کے کفن اور دفن کے پیسے بھی لوگوں سے چندہ جمع کر کے لیے جائے. یہاں سے اسلام کا مزاج دیکھیے گا. اور مال کے معاملات سورۃ نساء کے ابتدا میں آئیں گے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مال کو قائم رکھنے والا کہا. آج دنیا میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہل سکتے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. تو بہرحال یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارا مال جو ہے وہ مولوی صاحب کو ہی دے دیا جائے اور خود خالی ہو جائیں. آپ اپنی حلال کمائی، جائز کمائی کا حصہ اپنے بعد، اپنے بچوں، اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اگر مال چھوڑ کے مرنا ناجائز ہوتا تو وراثت کے قانون اتنے دینے کی ضرورت کیا؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کی ابتدائی قوانین دیے. اس پہ باتیں ہوں گی ساری جا کے سورۃ نساء میں، لیکن اسلام نے سارے حکم جو ہیں وہ ہمیں گریجولی دیے. جب اسلام نیا نیا تھا تو اس وقت تک مرنے والے کے مال کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے کوئی رول نہیں تھا. جس کا جس کو دل چاہتا دے دیتے. بعض دفعہ ٹرائبل بیسڈ کمیونٹی ہونے کی بنیاد پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس قبیلے کا کوئی شخص اگر مر جائے گا تو وہ اس قبیلے کے کسی شخص کو بھی دے دیں گے. کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں تھا. دوستوں میں ہو جاتا، مثلا آپ دو فرینڈز ہیں، اچھا اگر میں مر گئی تو میرے ساری چیزیں، ساری جولری تمہاری ہے، تم مر گئی تو میری ہوں گی، اس طرح کی کیفیت تھی. اسلام نے اس بندر بانٹ کو منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے مال کو اپنے دلی تعلقات کی بنیاد پہ دینے لگتے ہیں نا، تو بعض دفعہ قریبی لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دے اور اپنا سارا مال ایون چیریٹی میں دے دے. کوئی کہ مرتے مرتے میرا سارا سونا، میرے سارے پلاٹس اور میری ساری منی جو ہے وہ کسی مسجد کو دے دی جائے، کسی چیریٹی فنڈ میں دے دی جائے، اور میرے بیوی، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں کو ایک پینی نہ دی جائے. اسلام اس کو نہیں مانتا. اس پہ ہم بات کریں گے آگے، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اس آیت کے ساتھ یہ لکھ لیں کہ وراثت کے ابتدائی قوانین کی طرف اشارہ ہے یہاں. ابھی حتمی حکم نہیں آیا، وہ آئے گا سورۃ نساء میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک وقتی حکم بن جاتا ہے کہ ابھی وقتی طور پہ یہ قانون آ گیا ہے کہ تم کس کو دو گے جس کا اللہ نے حکم دیا. یہاں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ دینے کا حکم کس بیس پہ ہے؟ نیڈ بیس. جہاں ضرورت ہے دے دی جائے، نیڈی لوگوں کو دو. وراثت کا تعلق نیڈ سے نہیں ہے، یہ ریلیشن بیسڈ ہے. جو دوبارہ بول دیتی ہوں، وراثت سے حصہ لینا، یعنی کسی کے انہیریٹنس میں سے حصہ لینا، یہ نیڈ بیسڈ نہیں ہے. یعنی بعض بیٹیاں کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں لیتے. نیور. نہیں نہیں ہمیں نہیں دو، ہمارے بھائیوں کو دے دو. بھائی کہتا ہے نہیں تمہیں کیا لینا، تم نے کیا کرنا، تمہارے پاس تو پہلے ہی بہت ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں فلاں بھائی غریب ہے سارا اس کو دے دو، فلاں امیر ہے اس کو نہ دو. نیور. Inheritance is not need based, is relation based. آپ لو، آپ کا ہو گیا، اب آپ سارا کسی کو دے دو، نہ دو، آدھا دو، دو تمہاری مرضی. ایک دفعہ وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم سورۃ نساء میں جا کے آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. یہاں بس کہہ دیا کہ تم کس کو دو. الوصیت للوالدین، ماں باپ کو بھی دو، اقربین کو بھی دو. آج ویسٹ میں آپ دیکھیے کہ ایک عجیب آنکھ مچولی ہوتی ہے کہ کوئی مرتا ہے نا تو وہ اپنے ساری چیزیں اپنے کتے کے نام کر جاتا ہے. ایک نیٹ پہ بڑی تصویر معروف کی جاتی ہے کہ ایک ریڈ کشن پہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور گلے میں ڈائمنڈز کی مالائیں پہنی ہوئی ہیں. जी ये अपनी सारी कुत्ते को दे दो, ये बिल्ली को दे दो। जिन सोसाइटीज़ ने ज़िंदगी में रिश्तेदारों के हक़ नहीं दिए ना, जिन बच्चों ने ज़िंदगी में माँ बाप को छोड़ दिया, या जिन माँ बाप ने अपने हाथों से ज़िंदगी में अपने बच्चों को घर से निकाल दिया, मरते हुए फिर उनकी जायदादें या तो कुत्तों बिल्लियों को जाती हैं या चैरिटीज़ फ़ंड को जाती हैं, इस्लाम इसको कतन पसंद नहीं करता। का दो हक़न लिल मुत्तकीन, ये हक वाले का हक है, तुम दो, सही दो। कैसे दो, कितना दो, आगे हम पढ़ेंगे जाके। बस यहाँ ये बता दिया कि ज़िंदगी में जो माल है वो हमारा अपना है, इसके बाद जो है तुम्हारा नहीं रहता। वसीयत के लिए आज तीन, यानी हमारे पास 1/3 की गुंजाइश है। मिसाल है कि किसी के पास $100 है, मेरे ही पास ले ले, $100 है, मैं पूरी तरह उसकी मुख्तार हूँ, मैं वो सारे के सारे खुद खर्च लूँ, मैं सारे सदक़े में दे दूँ, मैं गिफ्ट में दे दूँ, आई कैन डू इट, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरा शौहर, मेरे घर वाले मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन वही $100 छोड़ के मैं अगर मरती हूँ और मरते मरते एक वसीयत कर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद ये $100 डोनेशन बॉक्स में डाल दिया जाए, तो मैं नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3, यानी $100 में से 33.33 पेनीस जो होंगी वो मैं कर सकती हूँ जिसको भी दूँ। पूरी वसीयत जो होगी वो ओनली 33 में से होगी, उसमें से मैं आप किसी खाला को दूँ, मस्जिद को दूँ, मैं कुछ भी कह दूँ, इसकी भी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे 100 के 100 मेरे जो हैं ये मस्जिद में डाल दिए जाएँ, देने हैं तो ज़िंदगी में दो। बाज़ लोग इंतज़ार करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, खुद खाते पीते हैं, अब दिल में बुखल इतना है, उस माल से मोहब्बत इतनी है कि मरते मरते कहते हैं हमारे बाद ये सारा सदका कर देना। बाज़ लोग बड़े खुश होते हैं इस पे, कहते हैं फ़लाँ ने तो लिख दिया है कि मेरे बाद मेरा सारा जेवर सदक़े में कर दो, तो फिर ज़िंदगी में क्यों नहीं दे रहे, नहीं अभी तो मैंने पहनना है। असल में ये भी एक बुखल ही होता है कि मैंने पहन लिया, मेरे पीछे मेरे भाई बहन ना ले ले मेरा, बच्चों तक तो लोग दे ही देते हैं, भाई बहनों को नहीं देना चाहते या बूढ़े माँ बाप को नहीं देना चाहते। तो अल्लाह ताला करे हक्कन अलल मुत्तकीन, या लफ्ज़ मुत्तकीन पे भी गौर कीजिएगा। इस्लाम जो है सिर्फ कवानीन नहीं देता, कोई रूखा फीका कानून नहीं है। आप ये मिजाज अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जहाँ कोई हुक्म आता है ना, साथ ही तकवा की बात। आप देखिए कि दुनिया में लॉस बनते हैं ना, तो उनमें फ्लॉस भी निकल आते हैं। मारूफ जुमला इंग्लिश का कि एवरी लॉ हैज़ अ फ्लॉ, जहाँ कोई कानून बनता है उसमें से कोई लूप होल भी लोग निकाल लेते हैं, कोई ना कोई हिडन रास्ता होता है हक़ तलफ़ी का। इस्लाम तकवा का चौकीदार बिठा देता है दिल के ऊपर, कोई वसीयत सही कर ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर तकवा ना हो, कोई कानून विरासत या कानून कसास नाफिज कर नहीं सकता जब तक कि तकवा ना हो। तो तकवा असल में वो चीज़ है जो ज़ाहरी अहकामात के अंदर उसकी रूह को भी बाकी रखता है। हमारे इस्लाम का रूखा पीका बुक ऑफ लॉ नहीं है। मतलब आप में से अगर किसी ने लॉ लिया हो, लिया भाई किसी ने लिया भाई, यानी पढ़ते हैं ना लोग जैसे लॉयर बनने के लिए, बड़े कानूनी शिखे, ये सज़ा ये करें वो करें, यानी बहुत खुश्की लगती है उसके अंदर। लेकिन इस्लाम में, इस कुरान में आप पढ़ेंगे लॉस, आज हमने कितना सख्त लॉ पढ़ा है ना, कत्ल का, डेथ की पेनल्टी का पड़ा है, लेकिन क्या आपको बोझल लगा? साथ साथ आपको इसमें जज्बात की नरमी, रहम, कहीं मुआफ़ी, फ़मनुफ़ी लहू मिन अख़ी की बात आ रही है, कहीं हक्कन अलल मुत्तकीन की बात आ रही है। यही है बेस्ट वे, अपनी ज़िंदगी पे आप इस्लाम लाएं लेकिन उसकी रूह के साथ, आप नमाज़ पढ़ें लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी साथ हो, सिर्फ एक्सरसाइज ना हो रही हो वो आपकी, आपका दिल भी उसके अंदर झुक रहा हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो वसीयत कर रहे हो लेकिन तकवा के साथ करना। एक रिवायत का ख़ुलासा आता है कि एक शख्स सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के बीच में थोड़ा सा फासला रह जाता है, लेकिन गलत वसीयत की वजह से वो जन्नत से दूर कर दिया जाता है और जहन्नुम में फेंक दिया जाता है। इतना बड़ा इस्लाम एक्शन लेता है हकूकुल इबाद या मामलात के मामले में। बाद लोग नमाज़, रोज़े, हज, ज़कात में बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन इंसानी मामलात में बड़े स्टबन होते हैं। वो हक माली मामलात में तो सबसे ज़्यादा ही तकवा कमज़ोर होता है। इसलिए कहा कि वसीयत सोच के करना, और इसको अपोज़िट भी कहा, कोई शख्स बिल्कुल जहन्नुम के करीब होता है लेकिन मरते मरते इतनी अच्छी वसीयत कर जाता है कि वो जन्नत में चला जाता है। तो लिहाजा वसीयत की जाएगी तकवा की बुनियाद पे की जाएगी। हाँ, फमम बदलहु बादमा समयहु, बस जो कोई इस वसीयत को सुनने के बाद बदल दे। मिसाल देती हूँ, वही $100 वाली ले ले कि मैंने इस मरते मरते वसीयत कर दी कि मेरे $100 में से 33 रुपये जो हैं वो चैरिटी में दे दें। अब मैं तो मर गई, हो सकता है मैंने लिख के वो पेपर अपने किसी भाई बहन को, अपने शौहर को, किसी को भी दे दिया। अब जब मैं जो चली गई, हो सकता है कि मुझे लिखने की मौका न मिला या मेरे लिखे हुए को बदलना आसान था, तो कोई कह दे कि लाओ ये 33 इनको क्यों दें, लिख दें जी इन्होंने कहा था 100 में से $3 किसी को सदक़े में दे दें, बाकी 97 जो है वो हमारे वर्सा में बटें। बदल सकता है ना। ज़ुबानी मैंने अपने किसी वारिस को कहा हो कि इसमें से 30 दे दें, वो कहे 30 नहीं 3 कहते, हो सकता है ना। तो कहा अगर कोई इस वसीयत को सुनने के बाद बदल दे तो वो तो मर गया, लेकिन फ़ाइन नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो उन बदलने वालों पर बड़ा ही इसका वबाल पड़ेगा, बहुत गुनाह होगा उनको, उनके ऊपर इस चीज़ का हक पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इसको बदल दिया। और वो तो मर गया, अब वो तो सुन नहीं रहा, वो तो बोलेगा नहीं अपने हक़ में, लेकिन इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, उसको पता है कौन कहाँ जा रहा है, किस तरह से मामला कर रहा है, उसको खूब पता है। अब ये कौन सी सिचुएशन थी, मरने वाले ने वसीयत ठीक की थी लेकिन बाद में किसी ने बदल दिया, और आखिरी आयत में बिल्कुल ही इसका अपोजिट है, और वो क्या, फमन खाफ हमें मूसिन, बस जो डरे वसीयत करने वाले से। वसीयत करने वाले को यहाँ मूसिन कहा गया, इसका रूट क्या होगा? मसलन ये लफ्ज़ अगर आ जाए आपको पेपर में तो क्या करेंगे इसका जवाब? जी वो स्वाजा मूसिन, ये देख लीजिए वो स्वाजा, ये मीम जो है ना ये असल में फाइल की है, इसको आप छोड़ दें तो ये वो स्वाजा होगा, ठीक है। और लफ्ज़ देख लीजिए जनफन, जीम नून फा है, जनफन कहते हैं सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े रास्ते पर चलने वाला, और असीम आसिमा जान बूझ कर गुनाहगार होने को कहते हैं। अब हुआ क्या कि मरते हुए कोई गलत वसीयत कर गया, मिसाल वही अपनी ही लेती हूँ, $100 थे और मैंने वसीयत लिख के दे दी कि 100 में से $50 जो हैं सदक़े में दे दिए जाएँ और बाकी 50 मेरे वरसा में बाँट दिए जाएँ। अब मैंने ये कौन सी वसीयत की, गलत वसीयत की, मुझे इसका हक नहीं था, अब क्या किया जाए। यानी यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई गलत वसीयत कर दे तो क्या किया जाए, तो वसीयत गलत कोई कर दे तो फिर क्या किया जाएगा, फसलह बैनहुम, ठीक कर दो। आपने पढ़ लिया कानून, आपको पता चला, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, मसलन कोई शख्स है वो कहता है मरते मरते वसीयत कर जाता है कि मेरे पैसों का यहाँ एक पब बनवा दिया जाए, मिसाल देती हैं, ऐसी कोई करता तो नहीं लेकिन कोई गुनाह की बात कह दे, कोई कहता है मेरे पैसों से कोई म्यूज़िकल शो रखा जाए यहाँ, मेरे पैसों से कोई फहाशी कड्डा खुल जाए। अब लोग कहते हैं ज़िंदगी भर नहीं मानते लोग बात बड़ों की, लेकिन वसीयत छोड़ते ही नहीं है। इस तरह बास मरने वाले को वसीयत इस तरह की कर जाते हैं बाप, जैसे रिश्ता जोड़ जाते हैं, ये जी मेरी अम्मा ने उसका हाथ उसको पकड़ा दिया था, अब वो लड़का तो बुरा। मिसाल है कि एक बेटा है, उसकी माँ वसीयत कर जाती है कि तुमने अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे से करनी है। अब अम्मा तो फौत हो गई, अब देखा क्या कि वो भाई बहन का बेटा जो है वो तो शराबी कबाबी है या उसका करेक्टर ख़राब है, अब क्या करें, अब उसी पे कर दें कि अम्मा ने कह दिया, नहीं अम्मा की नहीं अल्लाह की माननी है, तो कहा फिर क्या कर, फ़ासला बैनहुम, गलत वसीयतों को बदल दो, फला इस्माल ही इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब उसका क्या बनेगा जिसने गलत वसीयत की, कहा उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्यों, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो खूब अच्छी तरह जानता है बंदे को कि कौन कहाँ क्या करता है। तो यहाँ पे सबक पूरा होता है, कोई सवाल करना चाहें कोई बात तो आप पूछ सकते हैं। इनका सवाल ये है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने कुछ बच्चों को पैसा कोई जेवर या चीज़ दे देता है और छोटा बच्चा जो उसके पास है या मैरिड है और कहता है कि आप जो कुछ मेरा बचेगा वो इसको वसीयत के लिए दे दे, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों, एक जुमला याद रखिएगा कि वसीयत या विरासत का ताल्लुक मौत से है, आप ज़िंदगी में जिसको जो देते हैं वो तोहफ़ा है, वो हदिया है। ये सारे कवानीन हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ इशारतन बात आई, लेकिन जो आपने कहा उस तरह नहीं दे सकते, यानी वो आपकी विरासत नहीं है, वो आपका तोहफ़ा है। उसके अंदर भी अदल इंसाफ लाजमी है, एक बच्चे को दिया तो दूसरों को भी देना लाजमी है, ठीक है। तो अगर दिया है ज़िंदगी में तो भी सबको दे, अगर बाद में देना है तो भी सबको दे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.